नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारी खास पेशकश है। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग की इस शिक्षा को विश्व भर में 140 से भी अधिक देशों में प्रदान करती है। भारत के इस प्राचीन योग को आज पूरे विश्व का प्रकाश मिल रहा है। आज पूरा विश्व इस प्रकाश से आलोकित हो रहा है। आने वाले 21 दिनों तक हमारा एक छोटा सा प्रयास यह रहेगा कि हम योग को उसके संपूर्ण स्वरूप में जानें। योग की आवश्यकता क्या है, आज की इन मुश्किल घड़ियों में हम सभी समझने लगे हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी इसकी छोटी सी पहल है कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, योग सीख कर लोगों को सिखाने में अगर हमारी मदद चाहते हैं, तो ये उसी कदम का हिस्सा है। आइए आज से लेकर 21 दिनों तक हम संपूर्ण योग को सीखें, योग के गहन रहस्यों को समझें। और ये एक छोटा सा इनविटेशन है आप सब लोगों के लिए कि 21 दिन का योगा चैलेंज हमारे साथ लें। सिर्फ आप ही नहीं, आप अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने कोलीग्स को, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, सभी को मिलाकर ये कार्यक्रम हमारे साथ करें। 21 दिन में हम योगासनों को सिखाएंगे, फिजिकली अपने शरीर के लिए जो योग चाहिए उसे भी सीखेंगे, साथ साथ योग शास्त्र यानी पतंजलि ने जो योग के अष्ट अंगों के बारे में बताया है उसे भी हम समझेंगे। और ये छोटे से इस प्रयास में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आधे पौने घंटे के इस कार्यक्रम में आपको फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट्स योग के हम समझ सकें और जीवन में उसे अप्लाई कर सकें। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हो जाइए तैयार, शुरुआत करेंगे कुछ फिजिकल योगा से यानी शारीरिक योगासनों से। तो आप जब भी ये वीडियो देखें,
ओम शांति, वंदे मातरम। वृक्षासन के बारे में हम देख लेंगे। जैसे वृक्षों का फैलाव इतना बड़ा होता है लेकिन तना छोटा होता है, छोटे तने पर इतना बड़ा वृक्ष खड़ा रहता है तो इतना संतुलन भी आ जाता है। और ये वृक्षासन वास्तव में संतुलन के रिलेटेड है। एक पैर पर खड़े होकर के जिस प्रकार से शरीर में संतुलन बनाया जाता है, उसके कारण सबसे पहले बड़े मस्तिष्क में, फिर आज्ञा चक्र पर, फिर मूलाधार चक्र पर, अनाहत चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर इसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट रहती है। और एक पैर पर बैलेंस बनाना कोई आसान बात नहीं है, वो भी एक पैर पर बैलेंस बनाते बनाते पैर बदलना होता है। एक बार लेफ्ट वाला, एक बार राइट वाला पैर लेना होता है और हाथ ऊपर करके उसको संतुलन में लाना होता है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट पर बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा, तब ही आप इस आसन को करने में सफल होंगे। याद रखिए, जिन लोगों को मोटापा है वे लोग इसको नहीं कर पाएंगे, जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वे लोग नहीं कर पाएंगे, जिनके पैरों के पंजे में दर्द है वे लोग नहीं कर पाएंगे, जिनको यूरिक एसिड के प्रॉब्लम रहते हैं वे लोग नहीं कर पाएंगे, जिनको आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, जिनको सीआरपी पॉजिटिव है, फिर जिनका HLA-B27 पॉजिटिव है वे लोग इस आसन को नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों को रीढ़ की हड्डियों में कुछ ना कुछ ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, वे लोग नहीं कर पाएंगे। घुटनों को जिन्होंने डुप्लीकेट डाला हुआ है वे लोग नहीं कर पाएंगे। इसकी मर्यादाएं काफी है क्योंकि पूरे शरीर का वजन जो है वो केवल एक पैर पर आता है। इसलिए आप तैयार हो जाइए और इसके जो साइंटिफिक पहलू है उसको भी आपने अभी ही अनुभव करना है। अभी अनुभव करोगे तो इसका जो वैज्ञानिक बेस है वो आपको ख्याल में आ जाएगा। सबसे पहले दोनों पैर में एक बिल्लस का अंतर ले लें, फिर अपने राइट पैर की एड़ी को मूलाधार पर चिपका दे। इस प्रकार से आप पैर लेंगे ऊपर, फिर ऐसे लेंगे, पैर चिपका दिया, धीरे 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 ऐसे हाथ लेंगे ऊपर, फिर ऊपर में ऐसे नमस्कार मुद्रा करेंगे। इस मुद्रा में आप 10 से 12 सेकंड टिकेंगे और ऐसे करके पैर नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार आप दूसरे पैर से करेंगे, इस प्रकार से पैर लेंगे, हाथ धीरे धीरे ऐसे ऊपर लेंगे और ये वृक्षासन हो गया। धीरे धीरे इस प्रकार से नीचे ले लेंगे। संतुलन इसमें बहुत आवश्यक है, इसमें सख्त भूमि होनी चाहिए। भूमि थोड़ी सख्त होगी तो आप आराम से कर पाओगे। इससे एकाग्रता बढ़ती है। मस्तिष्क में अंदाजन 30 अरब सेल है, न्यूरॉन सेल। उस सबका शेप जो है वो षटकोण आकार है और इस सब में एक विशिष्ट प्रकार की स्पेस होना आवश्यक है। इस आसन से मस्तिष्क में जो षटकोणाकार शेप है वो बैलेंस रहता है। सबको एक विशिष्ट प्रकार का व्यायाम मिलता है क्योंकि बिल्कुल एकाग्रता परिपूर्ण रूप से दिमाग में आ जाती है, क्योंकि शरीर का संतुलन आपको करना पड़ता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से करें, आजू बाजू वालों का ख्याल रखे करें, अपने आप पर विश्वास हो, गिर न जाइए उसका जो डर है अगर, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। वृक्षासन से दूसरे जो फायदे है वो जो ताड़ासन में फायदे है बैक के रिलेटेड वो भी होते हैं। इससे घुटनों में व्यायाम मिलता है, पैर के पंजों में विशिष्ट रूप से एक्सरसाइज मिलती है और घुटनों में व्यायाम मिलने के कारण घुटना उसकी आयुष्य में बढ़ोतरी कर पाता है, उसके उम्र बढ़ जाती है। घुटने में जो घिसाई वगैरह है, जिनको समझो कोने में थोड़ा गैप हो गया है, वे लोग भी इसमें नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना, इसके लिए आपको रोज रात को नाभि पर जो कैस्टरऑल होता है एरंडी का तेल, उसकी 2 या 3 बूंदे रख देना, 5 बूंदे तक रख के थोड़ा फैला देना ताकि शरीर में लुब्रिकेशन पर्याप्त मात्रा में आ जाए और इसके कारण जो घुटने की घिसाई वगैरह है, रीढ़ की हड्डियों के जो प्रॉब्लम है उसको भी आपको आराम मिलेगा। इसका एक अनुभव अगर आपको करना है तो अभी आप एक प्रयोग कीजिए, गर्दन ऐसी घुमाइए, 3 बार घुमाइए, यहां से आपको कुचुर कुचुर आवाज आएगा। आप 7 से 10 दिन तक यहां नाभि पर कैस्टर ऑयल एरंडी का तेल 5-7 बूंदे रखेंगे तो ये आवाज चली जाएंगी और आपका वृक्षासन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर आपको वृक्षासन नहीं जमता है तो थोड़े दिन आप दीवार से टिक करके करें। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, एक ही पैर से इस प्रकार से पैर लेना, फिर ये ऐसे हाथ लेना, धीरे 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 हाथ ऊपर लेना और इस प्रकार से आप सूर्य की उपस्थिति में, जब सूर्योदय हुआ हुआ तो उसके सामने उपस्थित, उसके सामने खड़े रहते हुए आप करना, धीरे धीरे आप हाथ नीचे ले लेना। ये हुआ वृक्षासन, बहुत साइंटिफिक है, बहुत फायदेमंद रहेगा। ये भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, बच्चों से अवश्य करवाइए, बड़ी उम्र में इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप सशक्त है, तंदुरुस्त है तो जरूर से कीजिए। अस्तु, वंदे मातरम।
शांति
दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ गीता दीदी जी हैं। दीदी जी, स्वागत है आपका।
थैंक यू
दोस्तों। अभी हमने वृक्षासन के, जी दीदी मैं 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं। दोस्तों अभी हमने वृक्षासन सीखा, हरीश वैद्य जी हमारे साथ जुड़े थे। हर दिन हम कुछ नया आसन सीखेंगे और ये सब कुछ आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे जैसे जैसे कार्यक्रम चलेगा। और आज हमारे साथ गीता दीदी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय परिसर शांतिवन से हमारे साथ दीदी जी जुड़े हैं। दीदी जी का मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों की तरफ से। और योग के विषय पर गहन चिंतन करने की हम सबको आवश्यकता है। योग क्यों आवश्यक है, इसके कितने आयाम है, क्या क्या इसके डिटेल्स है, इसे अगर हम समझेंगे तो संपूर्ण योग को हमारे जीवन में धारण करने में बहुत मदद मिलेगी। और इसी पर विशेष प्रकाश डालने के लिए राजयोगिनी गीता दीदी जी हमारे साथ हैं। दीदी जी लगभग 15 मिनट हमारे साथ विषयों पर प्रकाश डालेंगे और फिर उसके तुरंत बाद हम लगभग 5-7 मिनट दीदी से प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिख सकते हैं, YouTube पे, Facebook पे, जहां पर भी आप देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखिए, उन प्रश्नों को हम दीदी जी से कार्यक्रम के अंत में पूछेंगे। तो दीदी जी, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आज के विषय पर आप प्रकाश डालें।
ओम शांति। हमारा भारत देश योग की, योग विद्या की जनेता भूमि है। काफी हमारे ऋषि मुनियों ने योग के बारे में चिंतन किया और हम सबको ज्ञान दिया है। देश विदेश में योग के बारे में काफी रुचि लोगों को हो रही है और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में योग दिन मनाने का प्रस्ताव रखा और विश्व के अनेक देशों ने इनको स्वीकार किया, तो हम सब जानते हैं कि तब से 21 जून विश्व के अनेक देशों में योग डे के रूप में मनाया जाता है। आवश्यकता है योग को यथार्थ रूप से जानने की, सीखने की और करने की। हमारे प्राचीन ऋषि पतंजलि जी ने अष्टांग योग सिखाया और उसमें उन्होंने 8 स्टेप जो बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, परंतु हम इसमें से सिर्फ आसन और प्राणायाम के बारे में जानते हैं अधिक और उसका ही अभ्यास करते हैं और इस प्रकार से इतनी अलौकिक योग विद्या को हमने सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक ही सीमित कर दिया है, परंतु योग बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है और हमारे जीवन के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक सभी पक्ष को अगर सुंदर रूप से विकसित करना चाहते हैं तो हमें इन 8 ही बातों को यथार्थ रूप से जानकर अभ्यास में लाना जरूरी है। उसका जो प्रथम यम शब्द है, जिसमें मूलभूत आधारभूत बातों को बताया गया है, 5 बातें उसमें बताई जाती है और उसकी पहली बात है सत्य। देखिए, योग शब्द का अर्थ है मिलन, उसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अंडरस्टूड है योग अभ्यास आरंभ करने से पूर्व हमारे पास आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय चाहिए, उसका यथार्थ ज्ञान चाहिए। इसके बिगर हम वास्तविक अर्थ में योग नहीं कर सकते हैं। अब आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान केवल परमात्मा ही दे सकते हैं और हम अपने आध्यात्मिक इतिहास को देखें तो अनेकानेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने चिंतन, साधना का स्तर और अपनी अपनी पवित्रता के आधार पर जो उन्होंने सोचा, समझा, अनुभव किया, वो उन्होंने हमें बताया। यही कारण है कि आज योग की अनेक पद्धतियां हमारे सामने आती हैं। फाइनल ट्रूथ अल्टीमेट सत्य, मूल सनातन सत्यों का ज्ञान परमात्मा हमें देते हैं। जब तक वो सद्ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता योग संबंध में, तब तक यथार्थ योगी हम नहीं बन सकते। मनुष्य का स्वभाव है, उनकी चॉइस है, हर बात का सत्य वो जानना चाहता है। चाहे विज्ञान भी जो आज खोज कर रहा है प्रकृति जगत के मूल सत्यों का, वो प्रकृति जगत से संबंधित है। जिन सत्यों को जानने से उनके आधार पर ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और अनेकानेक सुख सुविधा के साधन बने हैं। परंतु हम चैतन्य शक्ति मनुष्य आत्माएं हैं, हमें आध्यात्मिक जगत के मूल सत्यों का ज्ञान होना भी जरूरी है। कहते हैं कि मानव मन में ये सत्य जानने की जिज्ञासा हुई कि को हम, मैं कौन हूं। उसी जिज्ञासा से ही विविध आध्यात्मिक चिंतन का खोज हुई और अनेक अनेक उत्तर हमें अनेक ऋषि मुनि आर्स दृष्टाओं के तरफ से प्राप्त हुई। परंतु हम हमेशा परमात्मा को कहते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय। आज जबकि अनेक अनेक ग्रंथ शास्त्र बने हुए हैं, अनेक अनेक ऋषि मुनि संत हुए हैं, लेखक चिंतक विवेचक हुए हैं और अनेक अनेक ग्रंथों शास्त्रों किताबों से दुनिया भरी हुई है, फिर भी हम परमात्मा को ही क्यों कहते हैं कि आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, आप हमें असत से सत की ओर ले चलो। जरूर इन सब के द्वारा जो अभी तक मनुष्य आत्माओं ने साधना के द्वारा या विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा अपने चिंतन से जो बातें निकाली हैं, वो पूर्ण सत्य उसमें से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तब तो हम परमात्मा को कहते हैं। वैसे भी हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है और वो ही सारे सनातन आध्यात्मिक सत्यों का ज्ञान देते हैं। आत्मा, परमात्मा, कर्म, गति, समय का चक्र, योग, संबंध परमात्मा से, धर्म का सही ज्ञान, इन सब मूलभूत सनातन सत्यों का ज्ञान परमात्मा आकर के हमें देते हैं। और जब वो सत्य हमें मिलता है तो योग करना सहज आसान हो जाता है। हमारे भारत देश के जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें भी लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय तरीके से बोलो। जीवन में सत्य है तो हमारा आपसी व्यवहार, हमारा जीवन भी बहुत ही सुखद और सरल बन जाता है। इसलिए हम मनुष्य आत्माएं भी कोई सांसारिक घटना है, कोई सामाजिक बातें हैं, व्यक्तिगत आपसी संबंधों में या बातों में भी सच्चाई चाहते हैं। भल व्यक्तिगत रीति से व्यक्ति कई बातों में झूठ बोलते हैं, झूठ करते हैं, परंतु दूसरों के द्वारा वो सदा सत्य बात जानना चाहता है, सद्व्यवहार चाहता है, सद विचार जानना चाहता है, और इसलिए व्यक्ति लगे रहते हैं कि जब तक मुझे इस घटना की सही बात जानने को नहीं मिलेगी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्यों हमें सत्य पसंद है? क्योंकि हम आत्माएं भी सत्य हैं, अविनाशी हैं। हम अपने ओरिजिनल रूप में शुद्ध हैं, पवित्र हैं। हमें जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, वो भी हमें सत्य चाहिए। देखो, झूठ, बनावटी प्यार, सुख, सहयोग कई देते हैं, पर हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं कि नहीं, उसका प्यार सत्य नहीं है, बनावटी है। हमें शांति भी सच्ची शांति चाहिए। तो क्यों? क्योंकि आत्मा सत्य है, अविनाशी है, इसलिए हमें ये सर्व अनुभूतियां और प्राप्तियां सत्य चाहिए, शुद्ध चाहिए और सदा काल के लिए चाहिए। यही कारण है भौतिक साधनों से या दैहिक संबंधों से अल्पकाल के लिए तो मिलता है, हम उसमें सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, इसलिए अनेकानेक संबंधों में खोजते रहते हैं, अनेकानेक साधनों से प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु अगर हम सभी परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सत्य ज्ञान, मुख्य रूप से आत्मा स्वयं के बारे में और परमपिता परमात्मा के बारे में सही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो हमें बहुत ही परमात्मा की याद में रहना सहज हो जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही कारण है पतंजलि मुनि ने प्रथम अंग में यम की बातें कही हैं, और वो मूलभूत पांच ठोस अविनाशी बातों को, धारणाओं को योग का आधार रूप बनाया है। परंतु ये बातें न जानने के कारण हमने उसको महत्व नहीं दिया और सिर्फ शारीरिक आसन प्राणायाम की बात की, लेकिन हमारा अनुभव है कि परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें मिला है, उस सत्य के आधार से बहुत ही अवेयरनेस आती है, जागृति आती है और हम अपने जीवन को सही तरीके से योगी जीवन बना सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये बात बताई कि पतंजलि के योग सूत्रों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें यम और नियम की बात आती है, आगे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, और आज आपने सत्य के विषय पर जो पहला यम है उसके बारे में बताया। जैसे सत्य को जब हम समझने की बात करते हैं, आपने ये भी बातें बताई कि हम सबको सत्य प्यारा लगता है, भले ही हम कभी कभार झूठ बोल दें, बट हम चाहते हैं कि लोग हमसे सच्चा प्यार करें, लोग हमें हमारे साथ सच्चाई से व्यवहार करें, ये हम सब की कामना है, और शायद इसीलिए सत्य को भारत के ध्येय वाक्य के रूप में, सत्य में विजयते के रूप में हम जानते हैं। कुछ हमारे दोस्त अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी के अभी प्रश्न लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम है और हम दीदी जी से प्रश्न उत्तर करेंगे और दीदी से मार्गदर्शन भी लेंगे। दीदी, जैसे आप इस सनातन सत्य के बारे में कह रहे थे कि जितना हम सत्य के करीब रहते हैं उतना हम ज्यादा सुखी रहते हैं, उतना हम निश्चिंत रहते हैं, संतुष्टता आती है जीवन में, आप ये कह रहे थे। जैसे योग के बारे में ये भी हम समझने लगते हैं कि फिजिकल आसन तो है, बट इसके पीछे जो पतंजलि ने जो 8 सूत्र दिए गए हैं, अष्टांग योग कहा जाता है, उसमें से एक अंग यम में हम सत्य को समझ रहे हैं। तो ऐसा परमात्मा जो सत्य बताते हैं, उसमें से ये जो पहला सत्य क्या है, अक्सर हम ये सुनते आते हैं कि ये झूठी माया, झूठी काया। तो ये प्रश्न उठता है मन में कि अगर ये काया झूठी है तो फिर सत्य क्या है?
काया जो है, और काया से भी विस्तृत रूप में हम बात करें तो ये जो संसार का खेल है वो प्रकृति और पुरुष का बना हुआ है। प्रकृति माना 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, और पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा। हम केवल शरीर नहीं हैं, परंतु हम इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति हैं। शरीर के लिए हम कहते हैं कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील है और नाशवंत है। इस अर्थ में काया के लिए कहा जाता है कि झूठी काया, क्योंकि वो परिवर्तन प्राप्त करती है और आखिरकार वो नष्ट होती है, जबकि उसकी अपेक्षा इस शरीर को धारण करने वाली हम चैतन्य शक्ति हैं। हम जड़ नहीं हैं, हम सोच सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, हम कर्म करते हैं, ये चैतन्यता की निशानी है। तो हम चैतन्य हैं, तो संसार का खेल चैतन्य शक्ति आत्मा और प्रकृति के 5 तत्व से बना है। हमारा अपना अस्तित्व भी 5 तत्वों से बने शरीर और इस शरीर का उपयोग करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा से बना है। अब हम शरीर नहीं है क्योंकि हम जड़ नहीं है, हम चैतन्य है, हमारे में इच्छाएं हैं, विचार है, भावनाएं हैं, अनुभव है, कर्म है, ये चैतन्यता की निशानी। जब तक हम इस मूल सत्य को नहीं जानते हैं कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तब तक हमारे में आध्यात्मिकता नहीं आ सकती है। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर भान में रहते हैं, तो हमारा जीवन भौतिक बना रहता है क्योंकि हम इंद्रिय रसों में खींचे हुए हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। एक हमारे साथ ही है जो फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ओजस नाम है उनका, ओजस ठाकुर। ओजस प्रश्न पूछते हैं, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जो व्यक्ति सच के साथ चलता है तो उसे हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में क्या हम झूठ का सहारा लेना ठीक नहीं? क्यों हम सच के साथ रहें जब मुश्किलें आती हैं सच के साथ?
परंतु जो आत्मा शक्ति है, मनोबल है, वो तो सत्य के साथ रहने से ही आता है। अल्टीमेट कहते हैं ना, अंतिम विजय सत्य की ही होती है। भल असत्य को सभी मान लेते हैं, परंतु इससे वो सत्य नहीं बन जाता है। और सत्य को कोई भी स्वीकार न करे, इससे सत्य असत्य नहीं बन जाता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने में तकलीफें आती हैं, परंतु व्यक्ति खुद उसका बहुत दुख या दर्द महसूस नहीं करता है, क्योंकि उसे सत्य की शक्ति मिलती है और सत्य से वो निश्चिंतता और निर्भयता उसमें रहती। कहते हैं ना, झूठ बोलते हैं तो उनको वो याद रखना पड़ता है, क्योंकि जब अनेक के आगे बात करनी होती है तो मैंने क्या झूठ बना के कहा था। जो सत्य है उसको निश्चिंत है, उससे वो से 50 लोग भी पूछेंगे तो भी वो सत्य बात ही करेगा। तो ये हमें अपने जीवन में निर्णय करना होता है कि मुझे, क्योंकि सत्य वास्तविक है, असत्य तो है ही नहीं, वो तो बनावट है, इसलिए सत्य से ही हमें शक्ति मिलती है और अपने अनुभूति में निश्चिंतता निर्भयता रहती।
जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात दीदी आपने ये कही कि सत्य से हमें निश्चिंतता मिलती है, इसलिए ये चीज कही जाती है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी मगर डूबेगी नहीं। तो एक निश्चिंतता है कि भाई हाँ, इसे कोई डुबो नहीं सकता, और इसलिए ये ध्येय वाक्य जो आपने कहा कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है, तो भले हमें लगे कि हम झूठ का सहारा ले लें मगर आखिरकार जब विजय होनी ही है तो फिर हम सच के साथ चलें, और वही सच हम सबको अच्छा भी लगता है। मैं समझता हूँ दीदी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हमारे पास समय की कमी हो रही है। दोस्तों हम थोड़ी देर में लाइव मेडिटेशन करेंगे 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि ये संपूर्ण योग का कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे सवाल जवाब भी करेंगे, और अगर आप अभी से ही सवाल लिख देते हैं कमेंट सेक्शन में तो कल के कार्यक्रम के लिए भी हमारे लिए मदद होगी, हम इन कार्यक्रमों में आपके प्रश्नों को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। हमारे एक साथी हैं अभिजीत पॉल, ये पूछते हैं, वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग अगो, कैन आई कंटिन्यू नाउ। अभिजीत जी पूछते हैं कि एक समय पर वो ब्रह्मा कुमारीज के रेगुलर स्टूडेंट थे, बहुत समय की बात पहले है, मगर बीच में उन्होंने ये अभ्यास छोड़ दिया, क्या मैं अब इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, ऐसा अभिजीत जी पूछते हैं। दीदी
बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी बात, अच्छा अभ्यास, अच्छा सत्य ज्ञान, जितना भी आप सुने समझे और प्रैक्टिस में लाए उसमें फायदा ही फायदा है। गीता में भी जब ये प्रश्न पूछा गया भगवान को कि जो योग अभ्यास करते हैं वो करते करते छोड़ दे, या वो अगर शरीर भी छोड़ दे तो उस आत्मा की क्या गति होगी, तो उसमें यही जवाब दिया है कि जितना भी आपने अभ्यास किया है वो आपके साथ ही रहता है, इसमें कोई श्रापित भी नहीं होता है या कोई कष्ट नहीं मिलता है, जितना आपने किया वो आपके पास रहता है, आपके सत्कर्मों में जमा रहता है, इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लंबे समय तक रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, और अब की समय परिस्थिति को देखते हुए आप अनुभव करते होंगे कि सत्य ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों का अभ्यास जीवन में कितना उपयोगी है, हमारे मन बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है, इसलिए आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात भी नहीं रखना, कोई भय भी बात भी नहीं रखना, फायदा ही फायदा है।
जी, एक और साथी हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं, ध्यानेश्वर नाम है इनका, और ये पूछते हैं सत्य से मार्ग में चलने का क्या मार्ग है, क्योंकि बहुत बार हम सत्य के साथ चलना तो चाहते हैं बट कभी कभार हमारे लिए भी मुश्किलें पैदा होती हैं, तो ऐसे में सत्य पर चलने का सही मार्ग क्या होना चाहिए।
देखो, हमें जब तक हमारे जीवन और जगत के संबंध में चैतन्य शक्ति के रिलेटेड मूल सत्यों का ज्ञान, जो मैंने बताया कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, उनसे हमारे क्या संबंध है, हमारे कर्म की गति का ज्ञान क्या है, धर्म की सही व्याख्या क्या है, कैसे हमें योग लगाना है, इनका मूलभूत सत्य ज्ञान जब तक हमें प्राप्त नहीं होता है हमें जीवन जीने का सही मार्ग नहीं मिलता है। मैं अवश्य कहूंगी कि ब्रह्मा कुमारीज में पिता परमात्मा के द्वारा, क्योंकि इस विद्यालय में कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, परमात्मा ही इस विश्वविद्यालय का फाउंडर है, गाइड है, टीचर है, सतगुरु है, उन मूल सत्यों का ज्ञान आप प्राप्त करिए, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और एक उस सत्य ज्ञान के अनुसार चलने का सही तरीका, सही विधि आपको आ जाएगी।
जी दोस्तों, लगभग हम कार्यक्रम के उस मोड़ पर हैं कि हम दीदी जी से ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे। ये आखिरी प्रश्न मैं ले रहा हूं, आपके प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कल के कार्यक्रम में मैं उन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे एक दोस्त हैं रागिनी, ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं दीदी, और ये प्रश्न पूछते हैं कि एक वकील जो है, लॉयर जो है, कभी कभी सच साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले लेता है, तो क्या ये गलत है, ऐसा वो पूछते हैं।
वो एक व्यावहारिक बात है, और जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि अगर कोई कल्याण के लिए, बिल्कुल विशुद्ध कल्याण के लिए आप झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो भी एक सत्य को साबित करने का युक्ति है, सही विधि है। इसलिए ऐसी अगर बात है कि सत्य को सिद्ध करने के लिए उसे और बातों का आधार लेना पड़ता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है।
जी दोस्तों, आज के लिए हम यही दीदी जी से इजाजत लेंगे। दीदी जी ने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया है और उनके चिंतन और ज्ञान की गहराई से हम सबको लाभान्वित किया है। फिर हम पतंजलि के 8 सूत्रों में जो अनेक नियम बताए गए हैं, यम बताए गए हैं, अष्टांग के जो सिद्धांत बताए गए हैं, उन पर चर्चा जारी रखेंगे। योग को संपूर्ण रीति से समझकर जीवन में उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं दीदी जी का आप सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी का। दोस्तों, जैसे आज दीदी की एक सत्य जो हम सबको समझने की आवश्यकता है कि मैं आत्मा सत्य हूं, यह शरीर विनाशी है, सत्य अविनाशी है, और इस अविनाशी सत्य को हमने थोड़ा समझा है, और इसीलिए हमने अनेकों बार इस बात को सुनते आए हैं कि ये काया झूठी है, ये माया झूठी है। तो आइए उस गहन सत्य को रियलाइज करते हैं, क्योंकि योग का एक और एस्पेक्ट है, वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। तो आज 5 मिनट के लिए हम सब मेडिटेट करते हैं, तो आप सभी हो जाइए तैयार, जहां जहां आप बैठे हैं कंफर्टेबल पोजीशंस पे बैठ जाइए, और फिर हम मेडिटेशन से इस कार्यक्रम को एंड करेंगे। तो आइए मेडिटेशन करते हैं।
शांति, नमस्ते। संपूर्ण योग के, राजयोग के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज के प्रथम दिवस पर आपने सत्य को सुना, समझा, उसकी परिभाषा को जाना। अब इस सत्र में समय है उस सत्य का अनुभव करने का। तो चलिए इस सत्य के अनुभव में खो जाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल कर लें, और आपके इर्द गिर्द जो भी कारोबार चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई आवाजें आ रही हैं, या कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, कोई बात नहीं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लें। अपने मन और बुद्धि को उन सभी बातों से डिटैच करके अपना संपूर्ण ध्यान स्वयं पर केंद्रित कर लें। कुछ गहरी सांसें लें और मन को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। जो भी दिन भर की बातें, जो भी बात आपके मन को विचलित कर रही हो, जो भी संकल्प आ रहे हैं, विचार चल रहे हैं, उन सब की गति को धीमा कर लें। गहरी सांसें लें और मन को बिल्कुल शांत कर लें। तन स्थिर, मन शांत। चलिए सत्य के अनुभव में मन रूपी दर्पण ने एक सवाल पूछे कि मैं कौन, मेरा सत्य क्या है। उसी दर्पण में स्वयं की एक छवि देखें, क्या दिखाई देता है? ये शरीर, परंतु ये शरीर तो नश्वर है, समाप्त हो जाएगा, किंतु मैं और सत्य दोनों अविनाशी हैं, अमर है। तो मैं कौन, मेरा सत्य क्या है? मैं इस नश्वर शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। ब्रुकिटी के मध्य में विराजित एक दिव्य प्रकाश पुंज हूं, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर में विराजित होकर के आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है और अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा अनुभव करती है। मैं और मेरा ये सत्य स्वरूप दोनों अलौकिक है। देखे अपने सत्य स्वरूप को जो बहुत ही दिव्य प्रकाश पुंज की तरह प्रज्वलित है। मेरा ये सत्य स्वरूप हर प्रकार के भेदभाव से, रंग रूप जाति इन सभी भेदभावों से परे शुद्ध पवित्र है। मेरा ये सत्य स्वरूप अविनाशी अमर है। इस स्वरूप में संपूर्ण जगत का सुख समाया हुआ है। सत्यता ही सुख का आधार है। इस स्वरूप की अनुभूति ही मुझे शांति, प्रेम और शक्ति का एहसास दिलाती है। मेरे सत्य स्वरूप की ऊर्जा वायुमंडल में ऐसा दिव्य ओरा बना देती जिसके अंदर मैं स्वयं सर्व गुणों को महसूस कर पाती, अपने अंदर समाई हुई उस परम शांति को अनुभव कर पाती। ये सत्य स्वरूप अविनाशी अटल और मुझ आत्मा के अमृतत्व का अनुभव कराता है। इस स्वरूप को इसकी अनुभूति में ऐसा अपने आप को समाले जहां केवल सत्य प्रकाश रोशनी है। सुख शांति है। और चले इसी प्रकाश की दुनिया में परम सत्य को देखें, सत्य के सूर्य परमात्मा को, जो कि मेरी ही तरह एक प्रकाश पुंज है, अलौकिक दिव्य है। उनकी प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर इस तरह से प्रसारित होती कि उनके सानिध्य में मैं अपने सत्य स्वरूप को आत्मसात कर पाती। परम प्रेम, परम सत्य को जान पाती, अनुभव कर पाती। इस अनुभव को अपने अंदर समाते हुए स्वयं का ध्यान पुनः मस्तक के बीच भ्रुकुटी के मध्य में ले आए, जहां मैं आत्मा स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर की मालिक बन शरीर के सर्व कर्मेंद्रियों की राजा बन विराजित हूं। मैं एक दिव्य शक्ति हूं, पवित्र ऊर्जा, और ये मेरा सत्य स्वरूप है। ओम शांति। तो इसी सत्य स्वरूप की स्मृति में आशा करते हैं कि आप पूरे दिन को बिताएं हर कर्म करते समय अपने सत्य स्वरूप को याद रखें। ओम शांति। नमस्ते।
नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी निधि दीदी जी का, और बहुत ही सुंदर लाइव मेडिटेशन हमने किया। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि एकम सत बहुधा वदन्ति, एकम सत द्वितीयो नास्ति, यानी ईश्वर वो परम सत्य है और वो एक ही सत्य है, और इसे प्रबुद्ध जन अलग अलग लोगों से जानते हैं। आज हम सब ने अपने सही परिचय को समझा है, अपने मूल स्वरूप सत्य स्वरूप को जाना है, और इस सत्य स्वरूप से ही हम एक दूसरे को नमस्कार या नमस्ते कहते हैं। जो शब्द का अर्थ होता है द डिवाइन इन मी बोज टू द डिवाइन इन यू, यानी मैं जो सत्य हूं, मैं आपके अंदर के उस चिरंतन सत्य को, जो दिव्य सत्य है, उस आत्मा को प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, 21 दिन के इस योग चैलेंज में हम फिजिकल योगा सीखेंगे, साथ साथ कुछ गहरी बातें, कुछ बोध सीखेंगे जो पतंजलि ने हम सब के लिए योग सूत्रों में अष्टांग के रूप में दिया था, और फिर योग के शास्त्र के रूप में परमात्मा के दिव्य ज्ञान के कुछ अनूठे अनुभव भी हम करेंगे, राजयोग की साधना करेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस योगा चैलेंज में 21 दिन बने रहना न भूलें। अपने साथियों को, दोस्तों को, घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को जोड़ें और साथ साथ हमारे साथ योग करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी वक्त शाम को 6 बजे मुलाकात होगी। तैयारी के साथ आप सभी कल आइए, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओम शांति। नमस्कार।